नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, बजट से पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों से बातचीत की। जल जीवन मिशन में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जल सेवा आकलन का शुभारंभ। वर्ष 2026 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आगामी 2 जनवरी से बाड़मेर में, और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, कुछ संभागों में मावठ के आसार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला, और अब समाचार विस्तार से। नीति आयोग की बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ने अगले साल के बजट से पहले सुझावों के लिए प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों से बातचीत की। बैठक में उन क्षेत्रों के बारे में प्रमुखता से विचार विमर्श हुआ जिनमें अर्थव्यवस्था को मजबूती और विकास को गति देने तथा उभरती चुनौतियों के समाधान जरूरी हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत सेवाओं की कुशल उपलब्धता तथा सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए आज वर्चुअल माध्यम से जल सेवा आकलन का शुभारंभ किया। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया है कि जल सेवा आकलन जल जीवन मिशन पोर्टल पर ग्राम पंचायत के नेतृत्व में पेयजल सेवा के लिए डिजिटल आकलन सुविधा है। इसका उद्देश्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा सर्वेक्षण के बजाय सामुदायिक स्तर पर गांवों द्वारा जल सेवा प्रणाली का स्व आकलन करना है। हर घर जल ग्राम पंचायतों के जरिए ये कार्य अगले वर्ष 26 जनवरी तक पूरा होने की आशा है। श्री पाटिल ने कहा कि ग्रामीण पेयजल प्रणालियों को लंबे समय तक सुचारू रखने के लिए सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता जरूरी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संसद ने वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और मनरेगा योजना की कमियों को दूर करने के लिए विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित किया है। वे आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। विपक्ष के योजना का नाम बदलने के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अतीत में भी जब विपक्षी दल सत्ता में थे तो रोजगार संबंधी योजनाओं के नाम कई बार बदले गए थे। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत जी रामजी योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसे प्रधानमंत्री की गतिशक्ति पहल से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि इसमें बेरोजगारी भत्ता के लिए स्पष्ट प्रावधान शामिल हैं और अधिनियम के तहत आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
आगामी वित्तीय वर्ष में जो प्रस्तावित बजट प्रावधान है वो भी 1,51,282 करोड़ रुपया किया गया है। पिछले साल 88,000 करोड़ था केवल। जब 100 से 125 दिन मजदूरी करनी है तो उसके लिए वित्तीय प्रावधान आवश्यक है, वो किए जा रहे हैं। केंद्र का अपना हिस्सा बढ़ के भी अकेले 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा।
आज भीम यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप की 9वीं वर्षगांठ है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के भीम ऐप की वर्ष 2016 में आज के दिन ही शुरुआत हुई थी। इस वर्ष 28 दिसंबर तक भीम ऐप के माध्यम से 64,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के 66,30,00,000 से अधिक लेन देन दर्ज किए गए हैं। राज्य विधानसभा का बजट सत्र जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज भीलवाड़ा में मीडिया से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विधानसभा के गठन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष भर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जिसकी रूपरेखा के लिए 5 जनवरी को बैठक बुलाई गई है। विधायक निधि में भ्रष्टाचार के आरोपों पर श्री देवनानी ने कहा कि मामला सदाचार समिति को सौंप दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आज जयपुर में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इसके बाद अब राज्य मंत्री परिषद की बैठक जारी है। इस बैठक में प्रदेश की नई युवा नीति को मंजूरी मिलने और निकाय चुनावों में 2 संतानों के नियम में छूट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय संभव हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। वर्ष 2026 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज एक बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। इस वर्ष समारोह में जर्मन ड्रिल, एमजीडी बैंड और विभिन्न विभागों की झांकियां मुख्य आकर्षण होंगी। साथ ही लगभग 1200 स्कूली छात्र सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। मुख्य सचिव ने प्रमुख सरकारी भवनों और सार्वजनिक स्थलों पर आकर्षक रोशनी करने तथा स्टेडियम में सुरक्षा, पेयजल और यातायात के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत अब रक्षा उपकरणों का आयातक नहीं बल्कि दुनिया के शीर्ष 10 निर्यातक देशों में शामिल हो गया है। जोधपुर में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में तेजस और ब्रह्मोस जैसे युद्धक विमान और मिसाइलों का निर्माण हो रहा है और हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे हैं। शेखावत ने बताया कि भविष्य के युद्ध तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होंगे, जिसके लिए भारत खुद को तैयार कर रहा है। उन्होंने देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था का जिक्र करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। इस दौरान उन्होंने सैनिकों के साहस और बलिदान की भी सराहना की।
हमारी गौरवशाली सेना का इतिहास, ये इतिहास केवल युद्धों की गाथा नहीं है। हमारे गौरवशाली सैनिकों का इतिहास कर्तव्य चरित्र और संस्कारों की गाथा है। अगर हम देश के सेनाओं की बात करें, राजपूताना राइफल से लेकर के मराठाओं के शौर्य तक, सिख रेजिमेंट की अदम्य भावना से लेकर के गोरखा की निर्भीक शक्ति तक, हम भारत के लोग 140 करोड़ लोग शांति के साथ में रह सकें और सम्मान के साथ में जी सकें, हमें गर्व है उस परंपरा पर, जिस परंपरा को सैकड़ों सालों से आज भी ये सारी सेना के वर्टिकल जो है उसके ऊपर ताकत के साथ में जुटे।
69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता बाड़मेर में आगामी 2 जनवरी से शुरू होगी। इस अंडर 19 प्रतियोगिता की मेजबानी चूली का स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कर रहा है। 6 जनवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में देशभर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 62 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 700 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे। खेलों के इस बड़े आयोजन को लेकर बाड़मेर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है और स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी उत्साह है। प्रदेश में नए साल के जश्न को लेकर प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भारी उत्साह देखा जा रहा है। जैसलमेर के रेतीले धोरों से लेकर जोधपुर के ऐतिहासिक किलों तक हर तरफ रौनक है। राजसमंद के श्रीनाथ जी मंदिर में रोजाना 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं। इस बीच सिरोही के माउंट आबू और गुलाबी नगरी जयपुर में भी देशी विदेशी पर्यटकों का तांता लगा हुआ है। पाली जिले के रणकपुर और जवाई में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। और ब्यौरा हमारे पाली संवाददाता से।
नव वर्ष के स्वागत के लिए रणकपुर और जवाई में इन दिनों देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ है। पर्यटन स्थल पर्यटकों की रौनक से गुलजार है। सभी होटल्स हाउसफुल है। होटलों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। पर्यटकों के लिए कैंप फायर, डांस म्यूजिक, राजस्थानी नृत्य सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
और अब मौसम। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव के बीच कल से कहीं कहीं मावठ के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राज्य में मौसम में बदलाव होगा।
एक नया पश्चिमी विक्षोभ राज्य के अनेक भागों में सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से 31 दिसंबर को जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, अजमेर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के इलाकों में बादल छाए रहने और कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 1 जनवरी को इस सिस्टम का असर राज्य के उत्तरी भागों में यानी बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के रूप में रहेगा। जनवरी के शुरुआत में राज्य के अनेक भागों में कहीं कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय कहीं कहीं विजिबिलिटी वेलिडिटी 200 मीटर तक रिपोर्ट हो सकती है। इसके बाद यदि देखें तो 3-4 जनवरी को उत्तरी हवाओं के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में और गिरावट होगी और शेखावती क्षेत्र में इस दौरान कहीं कहीं मिनिमम टेम्परेचर 2-4 डिग्री सेल्सियस तक रिपोर्ट हो सकती है।
इस बीच हनुमानगढ़ में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने आमजन के लिए एडवाइजरी जारी की है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की सलाह दी है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आज से अमृता हाट मेला शुरू हुआ। जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग द्वारा आयोजित ये मेला 3 जनवरी तक चलेगा। इसमें विभिन्न जिलों के 100 से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों ने 50 स्टॉल लगाए हैं। मेले में मिट्टी के बर्तन, ऊनी पट्टू, टेराकोटा और कशीदाकारी से बने उत्पाद उपलब्ध हैं। साथ ही कैर सांगरी जैसे खाद्य पदार्थ भी मिल रहे हैं। लोग सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक इसमें खरीदारी कर सकते हैं। जोधपुर और भगत की कोठी रेलवे स्टेशनों पर अब यात्रियों को खान पान की प्रीमियम और ब्रांडेड सुविधाएं मिलेंगी। रेलवे बोर्ड के नए दिशा निर्देशों के तहत इन स्टेशनों पर नामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के फूड आउटलेट्स और स्टोर्स खोले जाएंगे। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को स्टेशनों पर ही भरोसेमंद, साफ सुथरा और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना है। इन आउटलेट्स का आवंटन ई ऑक्शन के माध्यम से किया जाएगा। भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 पर स्थित सारस चौराहे पर जल्द ही 6 लेन का फ्लाई ओवर बनना शुरू होगा। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 201 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी जारी कर दी है और साथ ही निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अलावा हाईवे के दोनों ओर 5 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड के लिए 118 करोड़ रुपए अलग से मंजूर किए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक, बजट से पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्रियों तथा विशेषज्ञों से बातचीत की। जल जीवन मिशन में पारदर्शिता और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए जल सेवा आकलन का शुभारंभ। वर्ष 2026 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह इस बार जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होगा। 69वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता आगामी 2 जनवरी से बाड़मेर में। और प्रदेश में कल से मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान, कुछ संभागों में मावठ के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।